नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागलोई नजफगढ़ रोड पर ड्रेनेज मरम्मत और सड़क सुधार के लिए महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की। दिल्ली सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेगी। प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स ने 10 मिनट की डिलीवरी सेवा की समय सीमा हटाने पर सहमति जताई। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने निर्णय का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त परिसरों के लिए ई प्रतिज्ञा मंच और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के लिए निःशुल्क पास जारी करने की घोषणा की और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू। दो बार की ओलंपिक्स पदक विजेता पीवी सिंधु भारत का नेतृत्व कर रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नांगलोई नजफगढ़ रोड पर ड्रेनेज की मरम्मत सड़क सुधार के लिए महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों को सड़कों पर होने वाले जलभराव से राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।
और आज जब हमने काम किया, इस सड़क पे निर्माण कार्य शुरू होगा तो उसका जल्द से जल्द रिजल्ट जब दिखाई देगा तो क्षेत्र की जनता भी देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ताने देने का काम करते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की सांसद कमलजीत सहरावत ने परियोजना को पूरा करने में काफी मदद की है। दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के लिए 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने से राजधानी में इनकी कुल संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के तरीके को तेजी से बदलने का काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा नशा मुक्त, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण हों। उन्होंने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के नशा मुक्त परिसर अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही।
Use of drugs by the youngsters, but today it is the need of the hour that we all must work together. Not only we keep ourselves free from drugs, we should not allow our friends, relatives, whomever we know, they should not get influenced by the drugs. That is the ultimate aim of ours today.
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त परिसरों के लिए एक समर्पित ई प्रतिज्ञा मंच और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और प्रशासकों के लिए एक ऐसा परिसर वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो विद्यार्थियों के कल्याण को प्राथमिकता दे सके। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि नशे के कारण छात्रों का स्वास्थ्य ही नहीं गिरता बल्कि राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज नशा मुक्त परिसर अभियान के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा नशा मुक्त परिसर अभियान को राजधानी के हर स्कूल और कॉलेज में सक्रिय रूप से लागू किया जाएगा।
युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति तभी बनती है जब युवा मानसिक रूप से भी सुदृढ़ हो, भावनात्मक रूप से समर्थ हो और नशे से मुक्त हो। ये केवल एक कैंपेन का लॉन्च नहीं है बल्कि ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय संकल्प है। भारत अब नशे को यूथ कल्चर के नाम पर रोमांटिसाइज नहीं करने देगा।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आगामी केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को देश भर के व्यापारिक समुदाय की ओर से व्यापक सुझाव भेजे हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कैट ने व्यापार को सम्मान, सरलता, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने वाले सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स ने 10 मिनट की डिलीवरी सेवा की समय सीमा हटाने पर सहमति जताई है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि डिलीवरी के समय को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो और स्विगी सहित प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के लिए अधिक सुरक्षा, संरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के बाद ई कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने निर्देश पर अमल करते हुए अपने ब्रांडिंग से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा हटा दिया है। कैट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस निर्णय को मानवीय और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे डिलीवरी कर्मियों की जान और सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पिछले साल जुलाई से इसकी सुनवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या दया का भाव केवल जानवरों तक ही सीमित रहना चाहिए और क्या मनुष्यों की सुरक्षा तथा उनके प्रति दया का कोई स्थान नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातर ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि पशु जन्म नियंत्रण नियम मुख्य रूप से नसबंदी पर केंद्रित है, जो आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके हमलों के जोखिम को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि लावारिस कुत्ते वन्य जीवों में बीमारियां फैला सकते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायालय से आग्रह किया कि इस मुद्दे को मनुष्य बनाम कुत्ते के रूप में ना देखा जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का एकमात्र प्रभावी तरीका नसबंदी है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा सत्र के दौरान आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस को रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 दिन का समय और दिया है। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी द्वारा सदन में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने के बाद उत्पन्न हुए विवाद में पंजाब पुलिस ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक, विशेष साइबर सेल के महानिरीक्षक तथा जालंधर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को सीधे सीधे दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से संबंधित बताया था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पंजाब पुलिस को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था, जिसके जवाब में पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा था। इस बीच दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा सत्र में गुरुओं पर चर्चा के दौरान आपत्तिजनक शब्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्री मिश्रा ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर सुश्री आतिशी से माफी मंगवानी चाहिए।
जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मालीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मालीना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मालीना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो।
दिल्ली पुलिस की एक टीम ने साइबर हॉक अभियान के अंतर्गत राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया है कि अभियान के दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4,70,000 की नकदी, 7 बैंक डेबिट कार्ड, 14 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मामले की जांच अभी जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के लिए निःशुल्क पास जारी करने की घोषणा की है। ये पास 15 और 16 जनवरी को निःशुल्क बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इन्हें www.amantran.mod.gov.in वेबसाइट या आमंत्रण मोबाइल ऐप से बुक किया जा सकता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड 23 जनवरी को आयोजित होगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने युवाओं से राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने और उद्देश्य को निर्धारित करने का आह्वान किया। 53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
18 जनवरी तक चलने वाले विश्व पुस्तक मेले में इस वर्ष 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। इस वर्ष मेले में भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमता @75 विषय पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले में इस वर्ष पहली बार आगंतुकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा मिल रही है। प्रकाश बुक प्रकाशन के नवीन बग्गा ने कहा कि निःशुल्क प्रवेश और किताबों की विविधता इस पुस्तक मेले में नए और पुराने दोनों तरह के पाठकों को आकर्षित कर रही है।
इस बार NBT ने एंट्री फ्री की, मुझे लगता है उसका भी कुछ अच्छा इम्पैक्ट गया है और कल और परसों क्राउड वॉज रियली गुड एंड एक्सपीरियंस ओवरऑल वॉज वेरी गुड।
वहीं हरियाणा से आए पाठक बिजेंद्र यादव ने कहा कि मोबाइल स्क्रीन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए किताबों को अपनाने की जरूरत है।
अगर हम रीडिंग करते हैं तो इससे जो मोबाइल के जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं, और दूसरा फिर जो डेप्थ यहाँ बुक्स में रीडिंग करने से आ सकती है वो हमें मोबाइल से शॉर्ट वीडियो और इन सबको देखने से नहीं आ सकती है।
मेले में वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के 150 वर्ष पूरे होने पर खास प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। इसके अलावा मेले का एक और आकर्षण राष्ट्रीय ई पुस्तकालय भी है, जो 6000 मुफ्त ई पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक डिजिटल पुस्तकालय है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार और बृहस्पतिवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार मुखमेलपुर गांव, न्यू राजेंद्र नगर, NPL कॉलोनी, पूसा, साउथ पटेल नगर, ग्राम टोडापुर और आसपास के क्षेत्र में कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके अलावा बृहस्पतिवार को मुकुंदपुर, झारोधा, कला, नाथूपुरा और प्रधान कॉलोनी क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों के निवासियों को आवश्यकतानुसार पानी इकट्ठा कर रखने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर लोग जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर भी मंगवा सकते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में लक्ष्य सेन, गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी समेत कई खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।
पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने अपने ही देश के आयुष शेट्टी को 21-12, 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने मलेशिया के ओंग यू सिन और TOE को 21-15, 21-18 से हराया, जबकि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को बाई मिला। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने थाईलैंड की ओर्निचा और सुकित्ता सुवाचाई को 21-15, 21-11 से हरा कर अगले दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता में कल दो बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु अपना मुकाबला खेलेंगी। वहीं थरुण मणिपल्ली, किदाम्बी श्रीकांत, ध्रुव कपिला, तनिषा क्रिस्टो, मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा समेत कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पोर्ट्स डेस्क से मैं विशेष शुक्ला।
राजधानी में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही और शाम के समय ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागलोई नजफगढ़ रोड पर ड्रेनेज मरम्मत और सड़क सुधार के लिए महत्वपूर्ण परियोजना की शुरूआत की। दिल्ली सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान में शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के लिए निःशुल्क पास जारी करने की घोषणा की। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।